नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। जीना क्या है? सही मायने में जीना है जब हम अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी उतना ही प्यार करें जितना हम खुद से प्यार करते हैं। प्यार सिर्फ देने का नाम है, जितना हम देंगे उतना हमारे अंदर खुशी और प्यार बढ़ जाएगा। इसी बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे शो की जिंदगी बने आसान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओमकार जी। नमस्ते।
नमस्कार।
ओम शांति।
ओम शांति।
ओमकार जी, प्रसन्नता वैसे तो बहुत बड़ा शब्द है लेकिन उसके छोटे छोटे मायने हैं, तो आपके हिसाब से प्रसन्नता जो हमारे जिंदगी में देने का नाम कहा जाता है, उसे देने के साथ साथ क्या हम अपने पास जो हमारे पास स्टॉक है प्रसन्नता का, उसे क्या हर वक्त अपने अंदर में बढ़ाने के कुछ तरीके भी हैं?
बहुत सही आपने कहा कि जो प्रसन्नता है वो देने से जुड़ी हुई है।
जी।
किसी ने खूब कहा है कि खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है, जिंदगी के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। तो ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता, ये हैप्पीनेस, ये डायरेक्टली अगर हम देखें तो देने के ऊपर जुड़ी हुई है। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितने भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो जाए उनके साथ, लेकिन आप देखेंगे उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है, वो जल्दी घबराते नहीं है। तो जब मैंने इन लोगों की स्टडी की कि किस तरह का बिहेवियर इन लोगों का होता है, क्या इनके अंदर ऐसी खास चीज है जिसके कारण ये ज्यादातर मौकों पे खुश नजर आते हैं, तो मुझे लगा कि इन लोगों के पास एक खास काबिलियत होती है और वो है दातापन के संस्कार, देने के संस्कार। अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं देता, ये व्यक्ति मेरा कहना नहीं मानता। लेकिन जो खुश रहने वाले लोग मैंने देखे वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं दूसरा मुझे प्यार दे या ना दे, लेकिन मुझे उसे प्यार देना है। दूसरा मेरी इज्जत करे या ना करे, मुझे उसे रिस्पेक्ट देना है। अगर दूसरा मेरा कहना नहीं मानता, कोई बात नहीं, मैं उसका कहना मान लूं। और ये नेचर का भी नियम है कि आप मेहंदी बांटेंगे तो मेहंदी हाथ को लगेगी, आप कोयला बांटेंगे तो कोयला हाथ को लगेगा। अगर आप दूसरे को ब्लेम देंगे तो आपके ऊपर भी ब्लेम आएगा। जो आप दूसरों को देंगे, आप दूसरे को खुशी देंगे, खुशी बांटेंगे, तो खुशी आपके पास वापस होके आएगी।
पर पहले मैं ही क्यों, पहले सामने वाला क्यों नहीं?
अब कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति हो सकता है हमारी जैसी समझ ना रखता हो, उसे इस कॉन्सेप्ट का पता ना हो कि देने का भाव सबसे बड़ा भाव है, वो लेने वाला बन गया हो। लेकिन मुझे अगर अंडरस्टैंडिंग है कि मैं दूंगा तो सामने वाला देगा, अगर मैं दूसरे से प्यार से बात करूंगा तो चांसेस हैं कि वो व्यक्ति चाहे कैसा भी है वो मेरे साथ भी प्यार से ही बात करेगा। अगर मैंने किसी को नमस्ते कह दी तो दूसरा भी, इतना तो कॉमन सेंस है कि वो भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से देगा। लेकिन हम सोचते हैं कि वो करे, उसमें हमारा ईगो आगे आता है। लेकिन इसमें ईगो छोड़ के हम सोचें कि मुझे देना है, देने का भाव रखना है। आप देख लीजिए, नेचर से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो प्रकृति है, कुदरत है, कुदरत में आप देखिए पेड़ क्या दे रहा है,
फल,
फल देता है, छाया देता है। नदी हिमालय से बहती बहती आती है, सबको पानी दे रही है, बिजली भी उसी से पैदा हो रही है, तो उसका काम भी देना है। अब नदी जाती 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 कहां मिल जाती है, भागती भागती समुद्र में। सारा पानी किसको दे देती है,
समुद्र
को। अब नदी को कौन पानी देता है? आप जिसको देंगे ना वो कई गुना करके आपको वापस लुटाएगा। प्रकृति, परिस्थितियां और परमात्मा उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करती है जो लेकर चीजें बांटता है, जो देने का भाव रखता है। उनको वो और देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति को अगर ये चीज दी गई तो ये अपने पास नहीं रखेगा, ये बांटेगा आगे। और जो बांटने का भाव है, शेयरिंग नेचर है, दूसरों को देने की नेचर है, ये हमें आगे बढ़ाती है। एक मेरे दोस्त है, वो मुझे बता रहे थे कि जब बचपन में, अपनी बात बता रहे थे कि बचपन में मैं बड़े गरीब घर से था, मैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, यहाँ तक कि फ्रूट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो वो कह रहे थे कि मेरा सेब खाने का बड़ा दिल करता था, अब सेब के लिए पैसे नहीं होते थे। एक बार कहीं से पैसे आए तो वो बाजार में से उसने एक सेब खरीद लिया और उसको खाने लगा। जैसे ही खाने लगा उसे याद आई कि उसके घर में 3 भाई और हैं उसके, और उसने खाते खाते तो उन्हें उसको खाया नहीं। उसने सोचा कि उनके पास भी तो सेब नहीं है और उनका भी दिल करता होगा खाने के लिए। वो सेब को जेब में डालकर घर ले गया और उसके 4 टुकड़े किए, सबको उनका आधा आधा 1/4 हिस्सा दिया। और वो कह रहे थे कि जो खुशी पूरा सेब खाने से मुझे मिलती उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे 1/4 सेब खाने से मिली।
क्या बात,
क्यों मिली? क्योंकि उसने वो बांट के खाया, सबको दे के अपने आप को स्वीकार किया। तो ये जो बांटने की आदत है ये हमें आगे बढ़ाती है। एक बार मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे से पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल, विच वन इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? क्या वो दिन जिस दिन आपने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, या वो दिन जिस दिन आप भारत रत्न से नवाजे गए थी, या वो दिन जिस दिन आपको राष्ट्रपति बनाया गया, और या कोई और अचीवमेंट वाला दिन? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया था जो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, इनमें से कोई भी दिन मुझे खुशी देने वाला नहीं था। मुझे खुशी उस दिन मिली थी जब मैं DRDO में था और हमने पोलियो से ग्रसित बच्चों की टांगों को सपोर्ट करने के लिए लाइट वेट कैलिपर्स बनाए थे। पहले जो मार्केट में कैलिपर्स अवेलेबल थे वो 4 किलो के थे, और हमने ऐसी मेटल उसमें यूज की जो 400 ग्राम उनका वेट रह गया था, इतना हल्का वेट, ताकि वो बच्चा उसको आसानी से उठा सके। तो जब वो लाइट वेट कैलिपर एक बच्चे को उसकी टांगों में लगाए गए तो उसकी मासूम मुस्कान ने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी। ये जवाब था डॉक्टर कलाम का। तो हमें लेसन, सिंपल लेसन है कि हमें देना है, देने का भाव रखेंगे तो जो देता है उसे अपने आप मिल जाता है। तो ये खुश रहने वाले लोग हैं ये देने पे विश्वास करते हैं। आप देख लीजिए देवता कौन थे, हम कहते हैं जी देवता पूर्वज थे हमारे, तो देवता और एक है दूसरा वर्ड है लेवता। तो जो देता है उसे कहते हैं देवता और जो लेता है उसे कहते हैं
लेवता।
भगवान को क्या कहते हैं? दाता। वो भी देता है, देवता भी देते हैं, लेकिन हम अभी जो वर्तमान युग में क्या बन गए हैं? लेवता। हर जगह से सोचते हैं यहां से भी मुझे मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, मांग रहे हैं, भिखारी बन गए। एक भिखारी तो है जो सड़क पे मांग रहा है भीख, और एक भिखारी है जो दूसरे से प्यार मांग रहा है, दूसरे से रिस्पेक्ट मांग रहा है, दूसरे से सहयोग मांग रहा है, वो भिखारी बन के घूम रहा है। लेकिन जो खुश रहने वाले लोग हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी खुशी आए, तो ये देने की नेचर, गिविंग नेचर हम डिवेलप करें। सूरज हमें क्या देता है?
रोशनी।
बल्ब क्या देता है?
लाइट।
गाय क्या देती है? दूध। कुर्सी क्या दे रही है? आराम
जी।
हर चीज दुनिया में दे रही है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो अपने यूज के लिए नहीं बनी हुई है, वो दूसरों के लिए बनी हुई है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। कुछ भी अपने के लिए नहीं बना हुआ है, जो भी बना है वो दूसरों के लिए बना हुआ है
जी।
तो इसका सिंपल सा मैसेज हमारे जीवन में अपनाएं कि मुझे जो चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे सब प्यार से बात करें, कोई मुझे डांटे नहीं, कोई मेरे ऊपर गुस्से ना करे। तो जो मैं चाहता हूं ऐसे तो दूसरा भी तो चाहता होगा, मैं भी दूसरों से प्यार से बात करूं, दूसरों को रिस्पेक्ट दूं, दूसरों के ऊपर चिल्लाऊं नहीं, गुस्सा ना करूं, तो ये दुनिया भी अच्छी बन जाएगी, हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा और खुशियां इतनी आएंगी कि बात मत पूछो
जी। भाई जी कंपैरिजन जो कि आज बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं जब एक लड़की दूसरे अपने ससुराल में जाती है तो वहां पर भी उसकी ननद होती है, उनके उसके उसके और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन एक सास जो होती है वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी की जो क्वालिटीज होती हैं वो अपनी सास अपनी बहू के अंदर देखना चाहती है कि जो मेरी बेटी करती थी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी बहू करे। तो ऐसे में अपने आप को जब एक लड़की जाती है तो वो अपने कंपैरिजन के साथ कैसे फाइट करे, जो एक ननद और एक देवरानी का जो एक कंपैरिजन होता है उसे कैसे फाइट किया जाए।
आपने कहा कि ये जो कंपैरिजन है, सास की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसकी बेटी से भी अच्छी उसकी बहू हो,
बिल्कुल,
और सारी उम्मीदें जो उसकी थी वो उसकी बहू पूरी करे। हर कोई इस तरह की उम्मीद रखता है और रखनी भी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति की अपना एक रोल है, हर एक का अपना भाग्य है, हर एक के अपने संस्कार है, हर एक की एबिलिटीज अलग है
जी।
हम हर चीज हर व्यक्ति से नहीं उम्मीद रख सकते, क्योंकि अपना अपना सोचने का तरीका है, अपने अपने लोगों के ढंग हैं, और ये जो कंपैरिजन हम करते हैं कि बहू है बेटी है, जो तुलना करने की आदत है, एक तो है रिश्ते की तुलना, जो आपने कहा कि रिश्तों में भी रिलेशन में भी हम कंपेरिजन करते हैं, ऐसी ही कंपेरिजन की आदत चाहे कहीं पर भी है, ये बिल्कुल एक ऐसी आदत है जो हमें प्रॉब्लम में ले आती है। तुलना इस दुनिया में किसी से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल, हर आदमी यूनिक है इस दुनिया में, हर एक का रोल दूसरे के रोल से अलग है। यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 अरब लोग हैं, किस किस से तुलना हम करेंगे और किस किस काम में तुलना करेंगे। भगवान ने हम सबको यहाँ भेजा एक अलग पार्ट के साथ, एक अलग भूमिका के साथ, हर एक को एक अलग स्क्रिप्ट मिला हुआ है। जैसे ड्रामा में स्क्रिप्ट होता है, हीरो का स्क्रिप्ट अलग है, विलन का अलग है, दूसरे साइड एक्टर का स्क्रिप्ट अलग है। इस ड्रामा की खासियत ये है, ये जो दुनिया एक रंगमंच है, कि यहाँ पर एक का रोल दूसरे के रोल से मिलता नहीं, और दुनिया के ड्रामा में भी जो 3 घंटे का फिल्म है वहां भी रोल नहीं मिलता, हर एक का अलग रोल है, और उस रोल के कारण उसकी पहचान है और उसकी खूबी भी है। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट और दूसरे की स्क्रिप्ट से कंपैरिजन करने लगते हैं। हम देखते हैं ये हीरो है, इसको तो राजा का रोल मिला हुआ है, ये राजा है, देखो महल में रहता है, अशरफियां गिन रहा है, पैसे ही पैसे हैं, और मेरे को मिल गया बहुत छोटा रोल। तो हमें लगता है कि ये जो राजा है ये रोल मुझे मिल जाता, क्योंकि उसके सुख देख रहे हैं हम, उसकी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने में आ रही हैं। अब आप देखो दूसरा सीन देखो, अब वो राजा, अभी तो राजा आपको दिख रहा है महल में घूमता हुआ, अब 2 साल के बाद उस राजा के ऊपर दूसरे राजा ने हमला कर दिया। अब हमला किया, वो युद्ध हार गया, उसको जंगल भागना पड़ा, अब जंगल में जाके वो इधर उधर भटक के मांग मांग के खा रहा है। अब उसका रोल दूसरा भी तो था, अगर आपने उसका रोल अच्छे वाला तो देख रहे थे, लेकिन उसके साथ जो कष्ट थे, जो मुसीबत थी। अब हम किसी डॉक्टर को देख ले, हमें लगता है कि डॉक्टर कितने पैसे कमा रहा है, कितने इसके पास लोग आते हैं, 2 मिनट के लिए 500 रुपए, 2 मिनट के लिए दवाई लिखाते हैं, 500 रुपए इसकी फीस है। हम सोचते हैं देखो कितना अच्छा पार्ट है, लेकिन उसने जो हार्ड वर्क पीछे किया, कितनी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचा, उसको नहीं देखते हम, उसकी अचीवमेंट को कंपैरिजन करते हैं, एफर्ट्स की कंपैरिजन नहीं करते। और अगर तुलना करनी भी है तो उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत से करो, कि उस व्यक्ति ने मेहनत की है, उस व्यक्ति ने कुछ किया है जिंदगी में, मुझे भी करना है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन हम रिजल्ट पे आ जाते हैं कि नहीं देखो इसको इतना भगवान ने दिया, मुझे दिया ही नहीं।
पर कई बार एफर्ट्स की कंपैरिजन करने की चक्कर में हम अपने एफर्ट्स को बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं, जब हम क्योंकि एक जो एक अपने आप के साथ में एक सैटिस्फैक्शन होती है, वो सैटिस्फैक्शन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं यार हम तो बहुत कम एफर्ट्स ले रहे हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो अपनी जो डिटर्मिनेशन है, अपनी जो एक थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे बेटर किया जाए।
उस वक्त हम ये थॉट अपने अंदर लाए कि देखो इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इतना इसने पुरुषार्थ किया है, एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किया है, परिश्रम किया है, तो इसको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे भी वैसा ही अच्छा रिजल्ट मिले, तो नेचुरल है कि मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे भी उतना ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जितनी कष्ट उसने उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए सहे होंगे, कठिनाइयों के दौर से गुजरा होगा, नेचुरल है मुझे भी गुजरना पड़ेगा। और बिना किए इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है, या तो भाग्य से मिल जाए या पुरुषार्थ से मिल जाए, और भाग्य भी हमारा पिछले कर्मों का ही फल होता है। कई लोगों को आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति करता तो कुछ है नहीं, लेकिन इसे मिलता बहुत कुछ है, वो उसका भाग्य है, वो उसका लक है। और लक भी हमारा पिछले किए हुए कर्मों का फल है, तो वो उनके पीछे भी कर्म ही है।
लक है क्या?
भाग्य हमारा वो चीज है जो कर्म हमने आज किए।
जी,
अब जरूरी नहीं है कि कर्म का फल अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। मैंने आज आपका भला किया तो उसका रिजल्ट मुझे उसी सेकंड मेरा भी भला हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि जैसे बीज होता है, कई बीज उसी वक्त अंकुरित हो जाते हैं, कई बीज को उगते उगते 6 महीने लगते हैं, साल भी लगता है। एक जगह चाइना में एक ऐसा पेड़ है जो आज लगाओ 3 साल बाद बड़ा होता है।
अच्छा,
टाइम लगता है। उसी तरह कर्मों में भी कुछ सिस्टम बना हुआ है कि हर एक कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, टाइम लगता है। किसी का उसी जन्म में मिल जाता है, किसी का अगले जन्म में भी जाके मिलता है। तो जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हमने किए वो हमारे भाग्य को बनाते हैं, वो भाग्य हमारे साथ जुड़ा रहता है। आपने पिछले कभी जन्म में अच्छे काम किए, हॉस्पिटल खोला, किसी को पढ़ाया, किसी का कोई भी भला किया, अब उसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है। अभी आप इसी अच्छे घर में पैदा हो गए, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ रही है।
भाई जी, अच्छे कर्म और बुरे कर्म कौन डिफाइन करेगा? आज जो हम करते हैं कोई भी कार्य, उसमें कहीं ना कहीं हम तो ये सोच करके करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो अच्छा और बुरा ये कौन डिसाइड करता है?
अच्छा या बुरा ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। हर व्यक्ति के लिए अच्छे या बुरे की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिंपल सी बात है, जो चीज आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ करती है। यहाँ एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, बैरोमीटर हर आदमी के अंदर, जैसे ही आप गलत करोगे आपकी इनर कॉन्शियस अंतरात्मा आपको बाइट करेगी। मान लो आपने किसी को कुछ कष्ट दिया, जैसे ही आप कष्ट दोगे आपको अंदर से आवाज आएगी तुमने गलत किया। ये हरेक के साथ लगा हुआ है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये काम ठीक था या गलत था। हाँ, बार बार करते करते, गलत काम करते करते, वो आप अपनी अंतरात्मा का गला इतना दबा देते हो कि बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। सपोज एक क्रिमिनल है, जब फर्स्ट टाइम वो किसी को मारेगा उसको रात को नींद नहीं आएगी। उसे लगेगा कि बहुत बड़ी गलती उसने की है कि उसने किसी के ऊपर गोली चला दी या किसी को चाकू से मार दिया। चाहे वो पुलिस की नजर से बच भी गया, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा उसको जीने नहीं देगी। अब एक बार मर्डर किया, 2 बार किया, 10 बार किया, धीरे धीरे करते करते उसकी आदत में ऐसा शुमार हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अंदर की आवाज कभी ना कभी आती जरूर है कि ये काम सही है, ये काम गलत है। वही अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन है। अच्छा कर्म वो है जो मुझे भी सुख दे, साथ में दूसरे को भी सुख दे और समाज को अच्छा करे। बुरा कर्म वो है जो मुझे भी प्रॉब्लम में डाले, दूसरे को भी प्रॉब्लम में डाले और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी पॉल्यूट करे। ये अच्छाई और बुराई की सिंपल सी डेफिनेशन है।
भाई जी, अच्छे कर्म कहते हैं कि जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा आगे हमको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है, लेकिन कई बार हम अच्छा करते हुए भी हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं अच्छा लोगों के लिए लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या सोच करके हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हर बार हम हताश हो रहे हैं। हम तो वन साइडेडली सबके लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरा तो कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में अपने आप के साथ में वो क्या ऐसी बातें करें जिससे लगे कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अपने आप के साथ में वन साइडेडली कैसे हमेशा खुश रहें?
ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं, दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें अपना अच्छा होता हुआ नजर नहीं आता। कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है
जी।
तो ऐसे मौके में एक बहुत बड़ा गुण है, वो है पेशेंस, धीरज। धीरज हमें रखना पड़ता है। हम ये याद रखें कि अच्छे काम का अच्छा फल आज नहीं तो निश्चित कल, बुरे काम का बुरा फल आज नहीं तो निश्चित कल। अगर अच्छा काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आज ही उसका फल मिल जाए, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हम सोचें कि क्यों हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हम रिजल्ट पे जाए ही ना। जो गीता का बहुत बढ़िया श्लोक है उसको अगर हम याद रख लें, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है, तू कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर। फल कई चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके पास्ट पे, प्रेजेंट पे, आपके फ्यूचर पे, आपको टोटल जर्नी का पता नहीं है। कि आपने पास्ट में क्या किया था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ना अपनी जर्नी का पता है ना दूसरे की जर्नी का पता है। इसलिए आप ये ना सोचो कि फल भी उसका वैसा ही आए जैसा काम किया है
जी।
आएगा, टाइम लगता है, धीरज चाहिए, उसी वक्त आ जाए फिर तो तुरंत फैसला हो जाए। ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें वैरायटी है दुनिया में, थोड़ा बहुत वैरायटी चाहिए। अगर उसी वक्त हो जाए फिर तो सब कुछ ही राइट राइट होता रहेगा। तो उस वक्त फल नहीं आता, टाइम लगता है। हम अपने आप को उस वक्त ये समझाएं कि कुछ भी हो जाए मुझे तो अच्छे कर्म ही करने हैं, मुझे नेक रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि एंड नेक काम का नेक होगा। अच्छा काम दुनिया में कोई भी ना करे फिर भी वो अच्छा ही होता है, उसको आप रॉन्ग नहीं कह सकते। और रॉन्ग काम, गलत कार्य सारी दुनिया करे फिर भी वो रॉन्ग तो रॉन्ग ही रहेगा
जी।
इसलिए हम इस चीज में ना जाएं कि अभी मेरे को क्यों नहीं मिला, फिर मिलेगा, और जितना लेट मिलेगा उतना विद इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए इसमें खुश रहे कि आपने अच्छा काम किया और उसका ब्याज बढ़ता जाएगा और अच्छी तरह से आपको मिलेगा। अचानक आपकी लॉटरी निकल आएगी, अचानक आपको चेहरे पे खुशी आ जाएगी, कोई ऐसी चीज हो जाएगी, तो आप उसका वेट कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है और धीरज से काम लें तो ये बड़ी बात नहीं है। और हम ये सोचें कि भला होगा ही होगा, जो दूसरे का भला करता है उसका भला होगा ही होगा, ये विश्वास हमें रखना चाहिए और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
भाई जी, आज जब एक लड़की दूसरे ससुराल में जाती है तो अपनी सास के अंदर अपनी माँ को देखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर देखा गया है, वैसे तो आजकल बात बदल रही है, ज्यादातर देखा गया है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होती है। और हर तरह से एक लड़की जब जाती है तो उसकी तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। ऐसे में अपने आप को क्या ऐसी बातें कहे जिससे खुद को भी एक हिम्मत मिले और दूसरों को एक साथ में अप्रिशिएट करके वो आगे भी बढ़ सके।
देखिए, बात ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के पास गया, उसकी शादी हुई
जी,
उसे अब दूसरे घर में जाना है,
दूसरे
घर में अलग तरह का वातावरण है, अलग सोच के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वैरायटी है। जितना प्यार लाड हमें अपने माँ बाप के घर में मिला, जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के घर में भी जाएं और वहां पर भी आपको वही चीजें मिले, वहां की कंडीशंस अलग है। अब हमें ओपन हार्ट के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना है। अब हम दूसरी जगह गए, अब उनकी नेचर को समझना है, उनके संस्कारों को समझना है, उनकी हैबिट्स को समझना है और उनके साथ तालमेल बनाना है
जी।
और तालमेल बनाने के चक्कर में लेकिन अपनी गुड क्वालिटीज को नहीं छोड़ना है। अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं उनके आगे कंप्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, अब उनकी नेचर कुछ और तरह की है, वो गुस्सा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं, तो धीरे धीरे उनके नेचर को अंडरस्टैंड करके उनको रिस्पेक्ट देते हुए हम ये सोचे कि अब इनके साथ रहना तो है ही, अब आए हैं, सब कुछ करके शादी हुई है, तो एडजस्ट करने की जो नेचर है, एडजस्ट जहां प्यार होता है वहां एडजस्टमेंट हो जाती है
जी।
चाहे क्या कितने भी विरोधी विचार हो, अलग अलग तरह की सोच भी हो, प्यार जहां पर है वहां एडजस्टमेंट करना मुश्किल नहीं है। तो हम सोचे ये मेरा घर है, अब मैं जहां आई हूं वो घर मेरा है और इस घर को अच्छा बनाना, इसको हैप्पी होम बनाना मेरी जिम्मेवारी है। चाहे कैसी भी सास है, कैसे भी पति देव है, ननद जो भी है, जैसी भी है, लेकिन वो मेरे अपने हैं। अब मैं इस घर में आई हूं, ये सब मेरे हैं, ये चाहे गलत भी व्यवहार करें, मुझे उसे एक्सेप्ट करके प्यार की शक्ति से उनको बदलना है। और उनकी उम्मीदें जो है, उम्मीदों को पूरा करने के लिए अगर अच्छी उम्मीदें रखते हैं मेरे से कि मैं उनकी सेवा करूं, उनको टाइम पे कोई चीजें भोजन बनाऊं या जो भी, ये रिलेशंस को अच्छी बना के रखूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे एक आइडियल बहू बनना है, एक आदर्श बहू बनना है
जी।
ये सोच के साथ हम उस घर के अंदर जाएंगे तो नेचुरली है कि उनको अच्छा लगेगा और वो भी आपको खुले हृदय के साथ स्वीकार करेंगे और आपस में एक अच्छा तालमेल बनके आपका घर बिल्कुल बढ़िया मंदिर की तरह बन जाएगा।
बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने, कंपैरिजन जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को और दूसरों को एक समान समझना। जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं उतना ही हमें दूसरों से भी प्यार करना है, लेकिन कंपैरिजन करने से आपका कुछ भी भला नहीं होगा। थैंक यू भाई जी।
थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। देखा दोस्तों, सूरज की रोशनी जिस तरह पूरी दुनिया को रोशन करती है, उसी तरह आपकी एक छोटी सी मुस्कान आपके आसपास के सभी लोगों को रोशन कर देगी। बस आपको मुस्कुराने की देर है और आप देखेंगे सब कुछ आपके पास आपके आसपास बदलने लगेगा। इसी सोच के साथ हम कल फिर मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सदा बांटते रहिए। ओम शांति।